कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन नमो नदीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Nitai Gauraribo, Ribo, Haribo, Haribo, Nitai Gauraribo. Jaya Prabhupada ki Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim Saraswatim vyasam Tato jayamudhiraye Nashta praesha padreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Srimad Bhagavatam, Skandadas Adhyayadas, Shlok Sankhya 25. Devarshihi me priyatama yat imau damar dhanagatmajau Tat tada sadhayishyami Yamala Arjuna Yad gatim sorry, yad gitam tat Mahatmana Devarshirme Priyatamo Devarshirme Priyatamo Yadimo Dhanajatmajo Yadimo Dhanajatmajo Tattata sadayishyami Tattata sadayishyami यद्गीतं तन्महात्मना यद्गीतं तन्महात्मना देवर्षिर्मे प्रियतमो देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमो धनदात्मजो यदिमो धनदात्मजो तत्तता साधयिष्यामि तत्तदा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना
शब्दार्थ इस प्रकार है देवर्षि ही
परम संत देवऋषि नारद में मेरा प्रियतमः सर्वाधिक प्रिय भक्त यत यद्यपि इमौ ये दोनों नलकुए तपावन गृह धनदात्मजौ धनी पिता की संतान तथा अभक्त तत् देवर्षि देवर्षि के वचन तथा जिस प्रकार साधयिष्यामि संपन्न करूंगा वे चाहते थे कि मैं यमुनार्जुन के समक्ष आऊं तो मैं ऐसे ही करूंगा। यत गीतम जैसा कहा जा चुका है तत् वैसा महात्मनः नारद मुनि द्वारा अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरे कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रियता वत्सल भक्त है और क्योंकि उन्होंने उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। तात्पर्य, नलकुबेर तथा मणिग्रीव को वास्तव में ना तो भक्ति से न ही भगवान से साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसे वैसे साधारण अवसर नहीं था। ऐसे ही नहीं कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार ऐसे नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्म हो तो उसे भगवान की साक्षात्कार हो ही जाएगा। ऐसा संभव है हो ही जाएगा ऐसा संभव है, किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नलकुमेर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें। अतएव भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर की संस्तुति है कि वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर भूलिया जाना है मोरा कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के साथ बिखे हुए हैं। दुर्लभम आत्मभक्तो, अतः भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता। भक्त की सेवा करनी होगी। इसलिए नरोत्तम नाथ ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। शुद्ध भक्त का दास बने बिना भवसागर से ऊपर नहीं हो सकता। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। आदो गुरु पदाश्रय। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीशाकान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च अतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये प्रसंग चल रहा है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैं ने बांधा। बांधते कृष्ण तो सामने उन्होंने देखा यमलार्जुन वृक्षों को। एक तो उन्होंने सोचा कि पिछले श्लोक में वर्णन आता है कि वैसे तो यशोदा मैं का पहला गलती है कि सुबह मुझे उठाए नहीं, बाद में दूध पिला रहे थे बीच में छोड़ के चली गई, दूसरा गलती। तीसरा, मैं तो दान धर्म कर रहा था बंदरों को और उसको भी देख के उन्हें बांध के रख दिया। अभी मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, कुछ अभी ये सब यशोदामय का हरकत बंद करना है। ऐसा विचार करते हुए इन्होंने देखा कि दूर से यमलार्जुन वृक्ष दिखाई पड़ा। यमलार्जुन वृक्ष जैसे दिखाई पड़ा तो कृष्ण को स्मरण आया, जो पिछले श्लोक में उन्होंने तैयारी किया। अस्तित्व में 24वां श्लोक को कोई तात्पर्य नहीं है, तो श्लोक में वर्णन हुआ है कृषेर भागवता मुखस्य सत्यम कर्तृम वचो हरिहि जगाम शनकैस्तत्र तत्रास्तम यमलार्जुनो। ऋषेर भगवता मुखस्य सत्यम कर्तुम वचः हरिहि सत्यम कर्तुम। विशेष श्लोक में जो शब्द आया सत्यम कर्तुम, इसके साथ आप संबंध जोड़ सकते हो भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य के समय उनका प्राकट्य के पीछे कारण क्या है। उसके विषय में कहा गया है सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितुम, वही बात इधर कहा गया है 24वां श्लोक में कि सत्यम कर्तुम वचो हरिहि। सत्यम कर्तुम, क्या सत्य करना चाहते हैं, सत्य सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋषेर भागवता मुखस्य, ऋषेर भागवता मुखस्य ऋषि नारद ऋषि के जो महाभागवत है उनके मुख से उत्पन्न हुआ कोई भी शब्द है उनको मुझे सत्य करना है। सत्यम विदातुम निजवृत्तिवासुम, तो कृष्ण सोचने लगे मुझे अभी नारद मुनि का जो वाणी है उसको सत्य करना है। नारद मुनि का वाणी क्या था, वचन क्या था कि आप दोनों को कृष्ण का दर्शन होगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि नारद मुनि ने ऐसा कह दिया इन दोनों को, ये तो बड़े पाप में रत हैं। लेकिन फिर भी नारद मुनि ने कहा कि मेरा दर्शन इन दोनों को होगा तो मुझे सत्यम कर्तुम, मुझे उसको सत्य करके सिद्ध करना है। ऐसे कृष्ण का कोई प्लान नहीं था यमुनार्जुन वृक्ष को उद्धार करने की, लेकिन नारद जी ने कहा इसलिए मुझे करना होगा। ये कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि भक्त का जो हृदय है या भक्त की वाणी है उसको सिद्ध करने के लिए अपनी वाणी को भी वो त्याग करने के लिए तैयार है। इसके विषय में शास्त्रों में अनेकों अनेकों जगह इसकी बात चर्चा होती है। भगवद गीता में भी हम जानते हैं अर्जुन ने कहा कृष्ण को, रथम स्थापय में इच्छुता, दोनों सेनाओं के बीच में जाके रथ को स्थापना करो। लेकिन कृष्ण को ये बात मानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन को विश्वास था कृष्ण जो है वो भक्त की वचन को सिद्ध करेंगे, इसलिए भगवान का नाम है अच्युत, जो अपनी पदवी से कभी च्युत नहीं होते। और भगवान की पदवी क्या है? वो भक्त की वाणी को रक्षा करना उनकी पदवी है। यानी जो अपनी भक्त की आज्ञा को कभी टालते नहीं है उनको अच्युत कहा जाता है। अपनी भक्तवत्सलता की स्थिर से कभी गिरते नहीं है इसलिए उनको भगवान को अच्युत कहा गया है। वैसे देखा जाए भगवान अर्जुन का ड्राइवर का रूप में, सारथी का रूप में स्थान स्वीकार करके अपनी भगवत्ता को त्याग किया। बलि महाराज का गेट के रूप में अपना भगवत्ता को त्याग किया। भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन वो भक्तवत्सलता को त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे पिछले श्लोक में कहा गया है जगाम शनक ही तत्र, धीरे धीरे से कृष्ण यमुनार्जुन वृक्ष के सामने आने लगे। आगे कहा गया है यत्रास्तम यमुनार्जुनो, यत्रास्तम यमुनार्जुनो, जहां यमुनार्जुन ये दोनों वृक्ष जो है खड़े, तो ये दो यमुनार्जुन वृक्ष जो है उधर खड़े थे, कृष्ण सामने आए। आने के बाद इन दोनों वृक्षों को कृष्ण देखा, देख के क्या सोचने लगे उसका वर्णन आज के श्लोक में है। पिछले श्लोक में इन दोनों वृक्षों के तक आने की जो वर्णन किया गया है 24वां श्लोक में, इन दोनों को वृक्षों को सामने देख के कृष्ण इन दोनों को देखे और क्या सोच रहे हैं उसका वर्णन इस श्लोक में है। व्हाट कृष्णा इज थिंकिंग, तो कृष्ण का विचार सुत गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि देवर्षिर मे प्रियतमो, देवर्षिर मे प्रियतमो, ये दोनों जो हैं ये देवर्षि मे प्रियतमो, मे मतलब मेरा जो है मेरा जो प्रिय भक्त है, प्रियतम का क्या है, सबसे प्रिय है, तमह तो प्रियतरा, प्रिय प्रियतरा प्रियतम, तो डिग्रीज जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो अच्छा बहुत अच्छा सबसे अच्छा। तो इधर नारद जी का वर्णन हुआ है, ऐसे कृष्ण सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नारद जी कौन है मेरे लिए? सबसे प्रिय है, प्रियतम पत्नी यदिमो धनजात्मजो, यद इमो धनजात्मजो। तो इधर नलकुवेर मणिगिरी का वर्णन कैसे संबोधित किया गया है? धनजात्मजो, धनजात्मजो, ये धन को प्रदान करने के लिए, धनदा दा मतलब धन को दान करने वाले, आत्मजहा यानी उनके शरीर से उत्पन्न हो, यानी जिनकी पिता है कौन, कुबेर के पुत्र है। तो ये दोनों नलकुबेर मणिग्रीव ये धनी व्यक्ति का पुत्र है, इससे मेरा कुछ देना देना नहीं है। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऑल दो दीज टू यंग मैन आर द सन्स ऑफ रिच कुबेर, आई हैव नथिंग टू डू। वैसे कहा गया है इधर एक शब्द है इधर यद इमो, यद इमो के पीछे ये भाव छुपा हुआ है। वैसे कृष्ण ने व्यक्त रूप में या इस श्लोक में देखेंगे व्यक्त रूप में ये भाव प्रकट नहीं किया गया है, भले ही ये अमीर व्यक्ति के पुत्र है फिर भी भले ही व्यक्त रूप में नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप में कृष्ण के हृदय में भावना ऐसा है कि ये तो धनी व्यक्ति के पुत्र, इससे कुछ देना देना नहीं मिलेगा। क्योंकि ना यमुनार्जुन नलकुवेर मणिग्रीव को ना भक्ति से लेना देना था, ना कृष्ण से लेना देना था, ना किसी आत्म साक्षात् लेना देना था, कुछ भी चीज से लेना देना नहीं था, लेकिन नारद जी का उनके साथ कुछ लेना देना था, उनका संबंध था। तो कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि अगर ये था माम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजामि, जिस तरीके से आप कृष्ण के साथ व्यवहार करोगे उसी प्रकार कृष्ण भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। नलकुबेर मणिग्रीव को कृष्ण से कुछ देना देना नहीं था, कृष्ण को भी उनसे कुछ देना देना नहीं था। पहले चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव विषय हमने कल सुना कि कृष्ण तो केवल उनके भक्तों को उद्धार करते हैं, जो शरण लेता उनको उद्धार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सबको उद्धार करते हैं, ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। तो सोचा कि क्या है यमुनार्जुन ऋषि को, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, बड़े बड़े लोग हैं जो धनी परिवार से हैं या बुद्धिमान हैं, लेकिन कृष्ण उन सबसे प्रसन्न नहीं होते, कृष्ण उनसे कुछ मतलब नहीं है, इज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए वो प्रश्न में कहा गया है, नायम मात्र प्रवचन अभ्यो नमे दशा नुनाशते शुणते तेन द्रव्य तस्तृणते तुम स्वाम। जो आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, भले श्रुतियों को पूरा याद कर लिया हो, बड़े बड़े अच्छा प्रवचन भी दे सकते हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। नायम आत्म प्रवचन लभ्य कृष्ण प्राप्त नहीं होते, न मेदशा न गुणाश्रय में यन वे वैश्व, जिनको कृष्ण चुनते हैं, जिनको कृष्ण चुनते हैं, ये वैश्व उन्नति का अर्थ क्या है, जिनको कृष्ण चुनते हैं वही व्यक्ति को कृष्ण अपना पूरा स्वरूप प्रकाशित करते हैं। अभी कृष्ण किनको चुनते हैं, तो कृष्ण उन्हीं को चुनते हैं जिसके ओर भक्त का कृपा है, जिसके ओर भक्त का कृपा है उसी को कृष्ण चुनते हैं, चुनना पड़ता है, ऐसा नहीं कि चुनते हैं, उनको चुनना पड़ता है। एक बार श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दो वी आर नॉट क्वालिफाइड, राधा रानी से यू एक्सेप्ट, कृष्ण हैज टू एक्सेप्ट, कृष्ण हैज टू एक्सेप्ट। भगवान जो है बाध्य हो जाते हैं उस भक्त को स्वीकार करने में, जब एक भक्त जो है हमको रिकमेंड करता है। तो अभी नारद जी ने कह दिया कि इन दोनों का कृष्ण का दर्शन होगा, अभी कृष्ण सोचते हैं ये भी क्या करे, भी कुछ तो करना पड़ेगा अभी। तो कृष्ण जब भी कोई कार्य करते हैं, लीला करते हैं, उसके अनेकों अनेक कार्य सिद्ध हो जाता है। एक तो उनका ऐसा था, कुछ तो बड़ा ऐसा काम करना है ताकि अभी यशोदा नंद महाराज कम से कम जाने में कौन हो, मैं तो बांध के रखते हैं, अभी ऐसा कुछ नटखट करूंगा ताकि उनका पूरा मुंह ही बंद हो जाए। और साथ साथ में उन्होंने ये भी सोचा कि नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार करना है, क्यों, नारद जी का उनका बात था, नारद जी का कृपा मिला था, तो नारद जी का कृपा जिसको मिला तो उनका वाणी को सिद्ध करना है, नारद जी का वाणी को भी सिद्ध करना है, और उनका नारद जी का हृदय में क्या था, इन दोनों को उद्धार करना था, इससे मुझे कुछ करना है करके वो कृष्ण उधर पहुंचे। इसलिए कहा गया है तदा साधयिष्यामि। ये साधयिष्यामि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। साधयिष्यामि, आपको याद होता होगा कि भगवद्गीता में एक श्लोक है कि भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहामि, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वहामि साधयिष्यामि जो है मैं करूंगा, ये प्रतिज्ञा होता है, उस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आई विल डू, ये संस्कृत भाषा में आई विल, ये इस प्रकार इसका इसका विभक्ति है। जैसे अलग अलग चीज़ा जैसे हम अलग अलग प्रकार के हैं, मैं सोचा, मैं करा, मैं ये करूंगा, ये कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया है। ये जो साधयिष्यामि शब्द के द्वारा प्रतिज्ञा को सूचित किया जा रहा है, तो जैसे भगवान वहामि शब्द के द्वारा कैसे प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण अपनी ओर उंगली दिखाते हैं, मैं करूंगा, आई विल डू इट, कोई और के द्वारा नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं करूंगा। तो कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान जो है किसी और के द्वारा भक्तों को संरक्षण करते हैं, नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, वो स्वयं करते, ही पर्सनली डज इट। जैसे एक माँ जो है बच्चे की सेवा कैसे करती है, वो खुद करती है, किसी और के द्वारा नहीं कराती है, क्योंकि भले ही कितने भी अमीर परिवार के खानदान के क्यों ना हो, जब बच्चे की सेवा की बात आती है माँ स्वयं बच्चे की सेवा करती है, भले बाकी सब काम नौकर चाकर से कराए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भले इस जगत की पालन पोषण जो है वो अनेकों देवताओं के द्वारा उस माध्यम से करें, प्रकृति के माध्यम से करें, लेकिन भक्तों का पालन पोषण जो है कैसे करते हैं, वो स्वयं करते ही डज इट पर्सनली। भले ही भौतिकवादियों का जो भगवान का जो कर्म फल जो है भगवान ही देने वाले हैं, लेकिन देवताओं के माध्यम से अन्य उनकी जो जो सिस्टम है मिनिस्टर के माध्यम से देते हैं। लेकिन जो उनके भक्त होते हैं, भले ही अच्छे या बुरा कर्म, भगवान स्वयं उसको ऐसा अरेंज करते हैं भक्तों को ताकि उनकी भक्ति में प्रगति वो साथ जल्दी उनके पास आ जाए। जैसे एक राजा है, भले ही वो प्रजा को देखभाल करते हैं लेकिन अपने बच्चों को भी देखभाल करते हैं, बच्चा भी उनके प्रजा है, लेकिन फिर भी बच्चों को कैसे देखभाल करेंगे, वो स्वयं देखभाल करेंगे। उसी प्रकार इधर भगवान श्री कृष्ण इसने सोचा कि तत् सदा साधयिष्यामि। तत् करते वो चीज, क्या वो चीज, जो नारद जी ने कहा था इन दिनों को, उस चीज को सदा साधयिष्यामि, कब मैं करूंगा, अभी, सदा मतलब अभी, साधयिष्यामि मैं करूंगा, यद गीतम तद आत्मनम महात्मनः। वापस और एक बार कहते हैं, वैसे तो ये जो आखिरी लाइन है वापस उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। शिवल्लभाचार्य कहते हैं कि ये एक ही बात को दो बार कहा गया है, तत् तदा और आगे देखेंगे यत् तन, तत् तदा और यत् तन दोनों एक ही चीज को सूचित किया जा रहा है, नारद जी और नारद जी के वचन को। लेकिन वापस क्यों कहा गया है, जैसे कभी कभी होता है कोई चीज की महत्व होती है या कोई चीज से आप प्रेम करते हो, मान लो कोई एक बच्चा वो लड्डू खाना चाहता है तो माँ को बोलेगा मुझे लड्डू चाहिए, माँ बोले क्यों चाहिए, मुझे लड्डू खाना है, वैसे वो खाना है बोल सकता है लेकिन बार बार लड्डू लड्डू बोलता रहेगा। ऐसे भगवान जो है भगवता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम चोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अष्टावि प्रेतात्मनः। तो वैसे पहले लाइन में भक्ति शब्द आ गया है और एक बार भक्ति शब्द इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने वापस इस्तेमाल किया क्यों, क्योंकि ये बताने के लिए महत्वपूर्ण पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये महत्व नहीं है, महत्व क्या है, भक्ति महत्व है। तो इधर वापस कृष्ण इसी बात को सोच रहे कि यद गीतम तम महात्मनः, तो मेरा इच्छा जो है यमलार्जुन को उद्धार करना मेरा इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा क्या है, यद गीतम जो नारद जी ने कहा ना उस बात को सिद्ध करना मेरा इरादा है। मेरा इरादा यमलार्जुन से कुछ मतलब नहीं है, मेरा किसी के साथ किससे मतलब है, नारद जी से मतलब है, नारद जी ने जो बोला है उससे मेरा मतलब है। यमलार्जुन पुष्य नलकुवेर मणिग्रह से कोई मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है कि कृष्ण जो है वो कोई भी कार्य करते हैं वो उनके मन में हमेशा रहता है कि मैं इस भक्त का प्रसन्न करूँ, हाउ टू प्लीज माई डिवोटी। तो जैसे भक्त सोचता है भगवान को प्रसन्न करना, वैसे भगवान भी उसी के प्रकार विचार रखते हैं कि मैं भक्त को कैसे प्रसन्न करूँ। ही इज ऑलवेज इन एंग्जाइटी, जैसे भक्त जो है जितना चिंता करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए उतना ही भगवान भी चिंता करते हैं मैं कैसे भक्त को प्रसन्न करूँ, उनकी वाणी को मैं सत्य करके सिद्ध करूँ। तो इधर यद गीतम तन महात्मनः, तो वापस कृष्ण नारद जी को कहते हैं, पहले लाइन में उन्होंने कहा क्या है, प्रियतमो, प्रियतमो शब्द इस्तेमाल किया नारद जी को, वापस और एक एडजेक्टिव और एक विशेषण लगा रहे हैं, क्या विशेषण, महात्मनः। महात्मनः का अनेकों अनेकों जगह अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई है। महाआत्मनः, महाआत्मना का ये शब्द ये है, महा ये महान, आत्मना शब्द को अनेकों अनेकों चीज को लागू होता है, लेकिन आत्मना शब्द का एक अर्थ मुझे स्मरण आ रहा है तो उसके विषय में कहना चाहता हूं। तो आत्मना शब्द का अर्थ है मन, जिसका मन बहुत विशाल है, जिसका मन बहुत विशाल है का अर्थ क्या है, वो सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे इधर नारद जी का विषय में देखेंगे तो नारद जी नलकुवेर मणिग्रह तो पापी व्यक्ति थे, पाप कर रहे थे, लेकिन फिर भी नारद जी ने क्या सोचा, मैं उनको उद्धार करूं। इसलिए भक्त जो है वो महामनाहा होते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो पुण्यवान है वो पापमान, पाप और पुण्य को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, पापी व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति को भी समान दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका कार्य है उद्धार करना। जैसे महामना का विचार, महात्मना का वर्णन की तुलना शास्त्रों में किया गया है बादल के जैसे, बादल ये नहीं देखता है कि मैं बारिश कहाँ गिराऊं, वो बारिश गिराना उसका स्वभाव है, तो समुद्र खारे पारे में भी जाता है कभी पानी, कभी वो पत्थर के ऊपर भी जाता है, कभी वो जो सारवान जमीन में भी गिरता है। लेकिन जब पत्थर के ऊपर गिरता है तो समुद्र में गिरता है तो उससे फसल नहीं उगता है, लेकिन सारवान जमीन पर गिरता है तो वो फसल उगता है। तो ये नहीं देखता है बादल कि ये सारवान जमीन है, पत्थर है, क्या है, वो सब नहीं देखता। उनका स्वभाव है बारिश गिराना। उसी प्रकार भक्तों का स्वभाव होता है कि वो कृपा करना। भगवान भेदभाव कर सकते हैं लेकिन भक्त कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान का स्वभाव रहता है इज वेरी नेचुरल, मैं ये है वो है, उनका भेदभाव करने की प्रवृत्ति भक्त के अंदर रहता है, भगवान के अंदर रहता है, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए जो मान लो कोई गलत कर रहा है तो या कुछ पाप कर रहा है तो भगवान जो है उनका अपने पास नहीं लेते। लेकिन गुरुजन ऐसे हैं अगर मान लो गलत भी कर रहा है पाप भी कर रहा है उनको सुधारने के लिए अपने पास ही रखते हैं। भगवान ने कहा कि तेषां दंडगतं पाप, बहुत सारा कंडीशन रखा, जब तक सारे पापों से दूर नहीं होगा तब तक मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जो उनके भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर प्रकार के लोगों को स्वीकार करते हैं, भले उनके शिष्य कितने भी गलती भी कुछ क्या करें उनके पास पे ही रखते हैं, उनको दूर नहीं भगाते। इतना हद तक कि जो जितना ज्यादा गलत करता है उसको अपने पास ज्यादा रखते हैं। तो एक बार मैं गुरु महाराज के पास ऐसे ही भक्तों के शिष्यों के साथ बैठा था, जो सेवक के साथ बैठा था, तो बैठे मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ थोड़ा सा घूमूं, उनके साथ भी रहूं, वैसे तो ज्यादा काम नहीं हो पाता उनको सेवा करना। तो मैंने जाके महाराज से पूछा, गुप्त बात है, कि महाराज आई वांट टू बी विथ यू, आई ट्रैवल अराउंड यू, एनी प्रॉब्लम? नो नो आई डोंट हैव एनी, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके साथ सेवा करना चाहता। नो 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 यू गो। तो महाराज इनको क्यों लेके जा रहे हो, यू डोंट वरी। तब बाद में कोई बच्चे पता लगा, मान लो कोई थोड़ा भक्ति में कुछ गलतियां करता है, कोई ढीला पड़ रहा है, उनको महाराज ज्यादा पास में रखते हैं, थोड़ा सुधर जाए। तो ये भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन भगवान क्या करते, मान लो कुछ अपराध किया इसको दूर भगा देते, चाहो ये कृष्ण का स्वभाव है, लेकिन भक्त का इस प्रकार का स्वभाव नहीं है। तो इसलिए इधर बहुत सुंदर एक श्लोक को कोट किया गया है, भक्तिनाथ ठाकुर का भजन। तो क्या कहा गया है कि वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर भूलिया भूलिया जाना हम मोरा, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारा। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आप तो ठाकुर हो और मैं कुकुर हूं। तो एक वैष्णव ठाकुर मतलब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव ठाकुर है, और वो ठाकुर है और मैं उनका एक कुत्ता हूं। तो जैसे अगर हम इसी भावना से, एक कुत्ते की भावना से अगर भक्त का चरण कमल को पकड़ेंगे, जैसे आप कुत्ता देखो कितना भी डांटो कुत्ता पीछे पीछे आता है कि नहीं, एक कुत्ते का स्वभाव होता है। आप जैसे आप उनके पीछे आना शुरू किया, उसको मारो पीटो, थोड़ा सा दूर जाकर वापस आएगा। तो उस प्रकार अगर कोई शुद्ध भक्त का चरण कमल को पकड़ ले तो उनको कृष्ण कभी भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार ये श्लोक को हमने चर्चा किया। आज मिश्र उत्सव, जगन्नाथ मिश्र उत्सव, तो उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जगन्नाथ मिश्र उत्सव, जैसे नंदोत्सव होता है वैसे जगन्नाथ मिश्र उत्सव। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आधी रात के समय, तो नंद महाराज ने अगला दिन उत्सव मनाया। इधर भी जगन्नाथ मिश्र भी जब उनका चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो शाम को समय था वो, और उधर इतना उत्सव कैसे हो पाएगा। तो उस समय खाली थोड़ा सा कुछ बच्चे का जन्म होके अनेक अनेक लोग आके दर्शन करने लगे, ये सब प्राय रात भर चला। तो अगले दिन क्या हुआ उसका वर्णन ये श्लोक में, इस अध्याय में है। यानी रात को भी कुछ कार्य हुआ था और सुबह भी कुछ कार्य हुआ था, उसके विषय में चैतन्य भागवत से हमको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे देखा जाए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है वो फाल्गुन पूर्णिमा, उस दिन नसीहत में पूर्णिमा होने पर भी क्या था, ग्रहण था। ग्रहण की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसा वर्णन आता है, बहुत सारे देवी देवता आए थे। तो सारे देवी देवता आके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके गए, लेकिन सचिमा और जगन्नाथ मिश्र दंग रह गए कि क्या हो रहा है, इतने सारे नवद्वीप में इतने सारे लोग तो है नहीं, कुछ नए नए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनको एकदम विस्मित हो गए थे। वैसे कहा गया है जगन्नाथ मिश्र का स्थिति ऐसा था कि वो क्या करूं क्या नहीं करूं मालूम नहीं पड़ रहा था। उनको इतना प्रेम में वो डूब गए थे कि एकदम एक कोने में जाके बैठ गए थे। हाँ, और सब लोग आ रहे, सब कुछ हो रहा है, केवल एक ही माता जो है वो होश में थी, वो है सीता ठाकुरानी। सीता ठाकुरानी सब मैनेज कर रही थी। हाँ, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा, वैसे सची माँ तो ऐसे ही लेटी हुए, बच्चा का जन्म हुआ है, जगन्नाथ मिश्रा को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या है मेरा घर में, कहाँ हूँ, क्या है। कभी होता है ना प्रेम में बिल्कुल बेहोश हो जाना, हाँ उस प्रकार वो एकदम अचेत हो गए। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र का स्थिति था रात भर। तो इधर चैतन्य भागवत का तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। प्रेम धन रत्न पारस देख गौर चंद्र बाजार। तो उधर गौरचंद्र कौन है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है, एक बाजार है। किसका? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का एक बाजार। किसके अंदर क्या मिलता है? प्रेम धन रत्न, प्रेम धन नामक रत्नों का बाजार। उस बाजार में प्रेम धन का रत्न कैसे थे, एक बहुत भारी संख्या में इतना ढेर लगा हुआ था रत्नों का, वैसा सब लोगों ने विचार किया। हे रमते प्रभु रहिलावतार आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। चतुर्दिके ध्यान लोके ग्रहण देखिया गंगा स्नाने हरि बोले यार धनिया। यार मुखे जन्मे न बोले हरि नाम से हरि बोली जन करिय गंगा स्नान। दशदिक पूर्ण हैलावती हरिध्वनि अवतीर्ण हय हसेन विजमणि। चैतन्य महाप्रभु का यानी शाम का समय का वर्णन हो रहा है इधर। किस प्रकार महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए उस समय दशों दिक्कों में हरि नाम को उच्चारण होना था। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि उस समय खास करके चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के समय अभक्त भी जब भी एक बार भी मंत्र हरे कृष्ण का नाम नहीं लिया हो, एक बार भी कृष्ण का नाम सुना भी ना हो, वो भी कृष्ण का नाम ले रहा था। सची जगन्नाथ देखी पुत्रे श्रीमुख दुई जन हरिनंद स्वरूप। ये दोनों सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों श्रीमुख चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख को देखे एकदम बिल्कुल आनंदित हो गए। के विधि करीब आई हा कि चुनास्पृह, क्या विधि करना है क्या करना है, इनका कोई कुछ कोई स्मरण में नहीं आ रहा था क्या करो। इसको संभ्रम कहा जाता है। संभ्रम दो प्रकार का होता है, एक है क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं है लेकिन फिर भी घूमता रहता है भागता रहता है, और क्या नहीं करना है क्या करना है वो मालूम नहीं पड़ता है, एक जगह जाके बैठ जाता है। ये संभ्रम में दो चीजें होता है। मान लो कि आपके घर में कोई अचानक कोई बड़े गेस्ट आ गए, जैसे विदुर के समय में हुआ था। विदुर जो है वो कृष्ण विदुर के घर में पहुंचे, विदुर नहीं थी विदुरानी थी, तो उस समय संभ्रम में वो अंदर जा रही थी बाहर आई थी क्या करना है मालूम नहीं पड़ता। तो जो मिला वो केला लेके छिलका निकाला और केले को फेंक दिया और छिलका दिया। इसको संभ्रम कहा जाता है, संभ्रम सेवा। कभी उतल पुतल हो जाते हैं या कभी वो संभ्रम में दिग्भ्रमित होकर बैठ जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद इसको भक्त सामने बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। के विधि करे बार न कि चुना स्त्री, क्या विधि करना मालूम नहीं पड़ रहा था। आस्ते वसे नारी गण जय जय पुकारे। तो कुछ लोग नारी लोग ने कोई सोचे कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, भी सब लोग जय जय बोलेंगे, सब लोग बोल रहे थे, सब जय जय कर रहे थे। घाइया सबे यथागन आनंद हैरा जगन्नाथ तेरा भवन। पूरा जगन्नाथ का भवन यानी जगन्नाथ मिश्र भवन जो है पूरा आनंद से भरा हुआ था, चचाकच भरा हुआ था लोगों से। और उस समय नीलांबर चक्रवर्ती तुरंत उन्होंने नोट किया महाप्रभु का जन्म का तिथि नोट किया, और ऐसा कहा गया है कि नोट करने का थोड़ा कैलकुलेशन किया, तो पूरा चार्ट वाट बनाया। लेकिन वो चार्ट का पढ़ाना जो है वो अगला दिन हुआ, यानी जिस दिन यानी आज के दिन नीलाम का शुरुआत नीलांबर चक्रवर्ती ने सबको बैठाया। जगन्नाथ मिश्र सचिमा सब लोग थे और निमाय से सो रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ने जो पूरा चार्ट जो बनाया था रात भर उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया, स्टडी करके उसका वो चार्ट को बना रहे हैं। ये जो जैसे बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसका कुंडली बनाना जो है वो सबसे पहला कार्य होता है, ये वैदिक सभ्यता है बच्चे का जन्म कुंडली। आजकल तो कोई जन्म कुंडली को बोलते हैं मानते नहीं है मानते हैं, लेकिन ये वैदिक सभ्यता है। ये सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर प्रतिलग्ने अद्भुत देखिया विप्रवर। तो उन्होंने देखा कि ये जो जन्म कुंडली है बड़ा अद्भुत है, ये जन्म कुंडली में लग्न करके होता है वो सब चीजों के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कभी और चर्चा करेंगे। तब नीलांबर चक्रवर्ती इसका वर्णन करना शुरू किए, कैसे वर्णन किए, तो उन्होंने कहा महाराज लक्षण सकल लग्न कहे रूप देखी चक्रवर्ती होइला विस्मय। तो तुरंत ने कहा ये जो लग्न है, ये जो महाराज लक्षण सकल लग्न कहे, सारे लग्न ये कहता है कि ये जो बच्चा है बाद में वो महाराज बनेगा। तो कौन सा महाराज, उन्होंने वही बताया डंडे वाले महाराज है या सिंहासन में बैठने वाले महाराज है, उन्होंने गुप्त रखा जानबूझ के। नीलांबर चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा कि ये संन्यास लेगा। तो इधर थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु चार्ज के विषय में कहा गया है, वो ऐसे तो पूरा गहराई में नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो बैठे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। तो शुक्र यानी वीनस जो है वो मेष राशि में था। ये जो शुक्र जब मेष राशि में रहता है बड़ा अद्भुत कार्य करता है। ये शुक्र जिसका भी, शुक्र मतलब फॉलोअर्स, जब अगर मेष राशि में है, मेष मेष मतलब क्या है, मकर, क्या उसको क्या बोले हिंदी में सुन रहे, गेड़ा, शीप, ये जो है शीप, ये क्या होता है बिना सोचे समझे पीछे पीछे चलता है कि नहीं, इसका स्वभाव है। तो शीप को वही बोलते हैं ना, ये गोट नहीं है, बेड़, हाँ से बेड़ बोलते हैं चलता है। शुक्र मतलब बिना, तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जिसका शुक्र स्ट्रांग है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे 10 लोग खड़े रहेंगे हमेशा। अरे महाप्रभु कहीं भी जाते थे पीछे पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, जितना स्ट्रांग है इनका, ये दोनों उच्च में है, शुक्र उनका बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल, और साथ साथ में मेष में होने की वजह से अनेकों हजारों लोग, जैसे महाप्रभु ने खाली एक बार बोल दिया, वैसे तो भगवान है लेकिन फिर भी उनकी कुंडली में भी सब लक्षण दिखाई पड़ता है, से कुंडली के ऊपर बहुत बड़ा असल सारे जितने चित्र महाप्रभु लीला है उनकी कुंडली के अंदर सब बता सकते हैं। तो इधर चांद काजे के ऊपर उनके ऊपर बड़ा आंदोलन चलाना था, महाप्रभु ने खाली एक बात बताया तो क्या हुआ, हजारों लोग एकत्रित हो गए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव रहता है जिनका शुक्र बहुत पावरफुल रहता है, खाली खाली बोलना मात्र से उनके सामने 10 लोग खड़े रहेंगे और उनके पीछे बहुत लोग रहेंगे। अगर हमारा समस्या क्या है, वो पीछे खड़े रहेंगे और थोड़ा सा अगर केतु का प्रभाव है वो तलवार लेके खड़े रहेंगे। तो नहीं और तो मैं हर चीज के बारे में वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन केतु जो है ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन क्या हुआ, ये केतु उस सिंह राशि में है, आप जानते हैं सिंह राशि सिंह है, सिंह को सिंह की गर्जना से क्या होता है, सबसे भी भयभीत होकर भाग जाते हैं, और ये केतु जो है इतना दुष्ट है, लेकिन फिर भी सिंह राशि में होने की वजह से केतु पूरा कंट्रोल में है, जैसे गुलाम बन जाता है और बहुत शक्तिशाली, इतना हद तक ऐसा कहा जाता है जो मुक्ति बृहस्पति नहीं दे सकता केतु दे सकता है। जिसका केतु एकदम बराबर स्थान में है व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है, यानी इस जगत में ऐसा कौन सा चीज है जो सबसे मुश्किल कार्य है मुक्त होना भवबंधन से, उसको दिलाने का शक्ति केतु में है। ये इतना पावरफुल चीज है केतु, और किसके कंट्रोल में है, उसमें कंट्रोल में है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कुंडली एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो आगे देखेंगे चंद्र, चंद्र नीच है, बहुत नीच में है, इसकी वजह से जिसका चंद्र बहुत नीचा रहता है उनका हृदय बहुत कोमल रहता है, वैसे भौतिक दृष्टिकोण में उसको उसको कमजोर बोलेंगे, कमजोर दिल वाला बोलेंगे, लेकिन कमजोर दिल वाला जो है असल में वो सबसे, अगर उसकी भावना सही है तो जिसका चंद्र बहुत कम रहता है उनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी भी रहता है, लेकिन अगर वो सही पोजीशन में है, अगर सही दिशा में है, वो रसास्वादन कर सकता है, उनके अंदर सेंटिमेंट्स भरा रहता है, इतने सारे सेंटिमेंट्स भरा रहता है कि वो बड़े कलाकार हो सकता है, और जो भी वो कहेंगे सब लोग उनको उनके बातों में पिघल जाएंगे, इनके अंदर वो स्वभाव रहता है, बिकॉज वेरी इमोशनल, जिसकी वजह से हम देखते थे चैतन्य महाप्रभु इतने सारे आध्यात्मिक दिव्य भावनाओं को पिघल जाते थे, सो इमोशनल। चैतन्य महाप्रभु जैसे कोई इमोशनल कोई है नहीं, फुल ऑफ इमोशन, वैसे कृष्ण जो है सर्व रस सार अखिल रसामृत मूर्ति है, लेकिन वो रसामृत मूर्ति होने पर भी वो रसों का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन रसों में पिघल के पानी नहीं बन रहे हैं, लेकिन इधर चैतन्य महाप्रभु एकदम पिघल जाते थे, जैसे जिगंबेरा में जो भी लीला दिखाए ये चंद्र नीच होने की वजह से है, मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, भगवत तत्व के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, अगर ये कुंडली अगर एस्ट्रोलॉजी को देंगे वो पागल हो जाएगा, ये ऐसा कैसे कुंडली है, तो एक एक चीज के ऊपर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है तो आगे जाएंगे, तो एक एक जो पॉइंट है थोड़ा सा भी ज्योतिष ज्ञान रहेगा तो ये कुंडली को देख के भी आस्वादन कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को कैसे है, अद्भुत है। आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडिंग ईच लग्न नीलांबर चक्रवर्ती foretold the highest fruits and was struck with wonder by seeing Lord's beauty because the Lord is the original Supreme Personality of Godhead. नीलांबर चक्रवर्ती का विषय में कहा गया है श्री भक्तिनाथ ठाकुर, ये उन्होंने ये जो चैतन्य भागवत की प्रतीका लिखते हुए कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती ने प्रत्येक चीज को बहुत सूक्ष्म विचार किया, कहीं एक जगह मैंने सुना था रात भर विचार किया उन्होंने, रात भर विचार करके एकदम बिल्कुल वो दंग रह गए, लेकिन जब अगले दिन नीलांबर चक्रवर्ती ने सब कहना शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली ये बंगाल का राजा बनेगा, बंगाल के विषय में भी एक भविष्यवाणी है, क्या भविष्यवाणी है, विप्र राजा गौड़ है बे हे नाचे, एक बड़ा विप्र ये गौड़ देश का राजा बनेगा ऐसा भविष्यवाणी है, विप्र बोले सेवा जानी बे तापचे, ये जानो कि वो जो विप्र कोई और नहीं है यही है, यही विप्र है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बंगाल का राजा बनेगा, राजा तो क्षत्रिय कुल का बनता है, ब्राह्मण कुल का कोई राजा नहीं बनता है, लेकिन बंगाल में ऐसा एक प्रेडिक्शन है, ऐसा भविष्यवाणी है कि बंगाल का राजा एक ब्राह्मण होगा, वो ब्राह्मण कोई और नहीं यही है। आगे ये जो राजा शब्द का परिभाषा देते हुए श्रील भक्तिसागर ठाकुर कहते हैं राजा मतलब महान व्यक्ति, हो सकता है कभी राजा की पदवी में बैठा हो लेकिन उसको कोई बात नहीं सुनता हो, लेकिन राजा का पदवी बैठे बिना भी महान व्यक्ति के बात लोग सुनते हैं, इसे महाज्योतिर्वित अग्रिते लग्न अनुरूप कथा लगिया कहिते, तो ने कहा कि ये सारे जितने भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं ये महान व्यक्ति का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, लग्ने यथा देखी सही बालक महिमा राजा न वक्ष कर दिते नारी सिंहा नारी सिंहा, तो इसके बच्चे के अंदर इतने दिव्य गुण हैं कि वर्णन के परे है, वाक्य तरार दिते नारी सीमा, कोई वाक्यों की सीमा के परे है, हम कोई वाक्य वर्णन ही नहीं कर सकते कितना महान है ये कुंडली, बृहस्पति चिनिया हे विद्वान, बृहस्पति जैसा बड़ा विद्वान होगा, अल्पी है बे सर्व गुण निधान, और सारे गुणों का आगार होगा, सही खाने विप्र रूपे ई महाजन प्रभुर भविष्य कर्म करने करी से कथन, तो जैसे नीलांबर चक्रवर्ती बोल रहे थे उधर एक ब्राह्मण था वो भी विद्वान था, ऐसे पहले जमाने में ऐसा था कि प्राय सभी लोगों को ज्योतिष आता था, क्योंकि जब कोई बच्चे को स्कूल में भेजा करते थे वो स्कूल में सबसे पहला शिक्षा व्याकरण निरुक्ति छंद ज्योतिष ये सब सिखाया जाता था, अभी तो उनको टाइम देखना ही बराबर नहीं आता, वो ज्योतिष शिक्षा सिखाते सबको, सब बच्चों को ये मालूम रहता था, तो एक ब्राह्मण तुरंत अपने आप को रोक नहीं पाया, दो उठ के खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला विप्र बोले से शिशु साक्षात नारायण क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती वो छुपा रहे थे इस बात को, लेकिन वो एक ब्राह्मण को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा साक्षात नारायण, क्योंकि ये कुंडली किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो कुंडली को पढ़ रहे थे वैसे उनके हाथ में कागज होगा तो मैं मालूम नहीं, नीलांबर चक्रवर्ती हाथ में कागज था, विपुल को खाली सुनने मात्र से ये जो कुंडली है वो केवल नारायण का हो सकता है, यहाँ है ते सर्वधर्म है वे स्थापन, वो सही धर्म को स्थापना करेंगे। नीलांबर चक्रवर्ती सोच रहे कि ठीक है मेरा पोता है उसके बारे में थोड़े ना मैं बता सकता हूँ ये सब चीजें सबके सामने, अगर मैं बोलो ये तो भगवान है लोग क्या सोचेंगे, तो वो थोड़ा सा छुपा रहे थे, संन्यास देने की लीला को छुपाया, ये भगवान है वो लीला को छुपाया, वो चीज छुपाया, ये धर्म का स्थापना करेगा ये छुपाया, तो क्यों, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती कौन है महाप्रभु के वो नाना हुए, और नाना पोते के बारे में सबके सामने बोले लोग सोचते हैं क्या वकान कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण अपने आप को रोक नहीं पाया, बोला कि अरे आप नीलांबर चक्रवर्ती आप कुछ छुपा रहे हो मैं बताऊंगा, तो ये आए हैं साक्षात नारायण है और सही सद्धर्म को स्थापना करने के लिए आए हैं। यहाँ है ते हैव अपूर्व प्रचार से एक शिशु करीब सर्व जगत उद्धार, ये शिशु बालक जो है सारा जगत का उद्धार करेगा, इतना अच्छा प्रचार करेगा और इसका पूरा जगत को उद्धार करने वाला है। ब्रह्म शिव सुख यान वचन अनुप या वांछ अनुक्षण यहाँ है ते पाइव सर्वजन, तो ये ब्रह्मा शिव जी वो भी उनका चरण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा ये ब्राह्मण ने कहा। जैसा इस ब्राह्मण ने कहा सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शन सर्व जगतेरा प्रीत हवे हने, जैसे लोगों ने लोग इनको खाली देखने मात्र से वो सब लोगों को प्रेम प्राप्त होगा और जीवन प्रति इतना इतना उनके प्रति दया रहेगी, और केवल दर्शन करने मात्र से उनकी दया प्राप्त करने के मात्र से सब लोगों के अंदर वैराग्य आ जाएगा। अन्य रखी दया विष्णु धरे ये यवन तारे हो ये शिशु भजबे चरण, बाकी लोगों के क्या कहना, यवन लोग जो विष्णु के विरुद्ध होते हैं विष्णु द्रोही ये यवन, विष्णु के विरुद्ध होने वालों को यवन कहा गया है, वो भी तारे हो ये शिशु भजबे चरण, इन लोगों को भी ऐसे यवन लोगों को भी ये शिशु जो ये बच्चा जो तार करेगा और क्या करेगा ये वो सब लोग उनको भजन करना शुरू करेंगे, ये शिशु को बच्चा को वन करेंगे। हम अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाय विहन आय विप्र ये शिशु करीब प्रणाम, अनंत ब्रह्मांड में सब लोग उनका गुणगान करेंगे, ब्राह्मण लोग भी इस बच्चे का गुणगान करेंगे, महान ब्राह्मण लोग भी उनके बच्चे का गुणगान करेंगे, यानी उनके गुरुजन ऐसे श्री भक्तिदास ठाकुर व्याख्या में कहते हैं कि ब्राह्मण शब्द का इधर अर्थ यह है कि गुरु, तो हम देखते हैं कि ईश्वरपुरी और जो संन्यास दिया केशव भारती ये दोनों ने भी चैतन्य महामुनि का पहले पूजा किया, आज भी देखा जाए शिष्य गुरु का पूजा करता है लेकिन गुरु पूजा शिष्य को पूजा नहीं करता, तो इधर वो भव्य ब्राह्मण ने कह दिया भागवता धर्म मया यहाना शरीर देव द्विज गुरु प्रीति मात्र भक्त धीर, ये जो है भागवत धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, ब्राह्मण गुरु पिता माता और ये जितने भी personification, benefactor, demigods, सारे देवता ब्राह्मण गुरु माता पिता सबको उद्धार करने वाले सब, विष्णु ये न अवतारी लोयान धर्म सही माता ये शिशु करीब सर्वकर्म, जैसे विष्णु प्रकट होते हैं और अलग अलग समय में धर्म की स्थापना करते हैं इसी प्रकार ये बच्चा भी करेगा। ये जो बच्चे के अंदर जो लक्षण है वो कौन वर्णन कर सकता है, कोई इसी का हिम्मत ही नहीं वर्णन करने की, इतना अद्भुत उनका ये कुंडली है। ध्यान तुम्हें मिष्ट पुरंदर भाग्यवान, सब लोग जानो ये विश्वपुरम जगन्नाथ मिश्र तुम बहुत भाग्यवान हो, तो इसलिए मैं तो ये बच्चा है लेकिन मैं आपको वंदन करता हूं, यारा ये नंदन तारे रहु का प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तुम्हारे घर में इतना अद्भुत बालक जन्म हुआ है तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है नो कोष्ठी गाइला अमी भाग्यवान श्री विश्वम्बर नाम है वे नाम, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस हॉरोस्कोप को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये भी मेरा भाग्य है इसका नाम विश्वंबर होगा। अभी ये जो प्रवचन चल रहा है इनका नीलांबर चक्रवर्ती का, यहाँ वे लोग नवद्वीप चंद्र ये बालक ये जाने केवल परमानंद। इनका नाम परम नवद्वीप चंद्र उनके रूप में बड़ा विख्यात होंगे और ये बालक जो है केवल आनंद को प्रदान करने वाला है। हे न रथे पचे हाय दुख के प्रकाश अथेव न कही बा प्रभु रोसन्यास। कुंदन दास ठाकुर कहते हैं इतना बड़ा उत्सव में लोगों को दुख होगा करके नीलांबर चक्रवर्ती ने क्या किया, वो सन्यास के विषय में उन्होंने नहीं कहा। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रे राख्यान आनंद विहल विप्रदिते छहेदान। तो जैसे जगन्नाथ मिश्र उन्होंने सुना अपने पुत्र के लक्षणों के विषय में, स्वाभाविक तरीके से कोई भी पिता अपने पुत्र के विषय में थोड़ा सा गुणगान सुनता है कितना आनंदित हो जाता है। तो जगन्नाथ मिश्र बड़ा आनंदित होते हुए पुत्रे आख्यान आनंदे विहवल हुए होके विप्र दीते चाहे धन। उन्होंने सोचा कि मैं सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा धन प्रदान करूं। कि चुनाई सुदापी आनंदे विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। ने कहा कि मेरे पास जगन्नाथ मिश्र जो है बहुत, वो तो बड़ ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, गरीबी जो है वो ब्राह्मणों का आभूषण होता है, उनके पास इतना नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मणों के चरणों में गिर पे जगन्नाथ मिश्र रोने लगे। सेहा विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी आनंदे सकल लोक बोले हरी हरी। तो ब्राह्मण तुरंत जगन्नाथ मिश्र का चरण पकड़ लिए, पकड़ के जोर जोर से सब लोग हरी 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 बोले लगे। दिव्य कोष्ठी सुनी या बांधव सकल जय जय दिया सबे करे न मंगल। ये जो हरी हरी शब्द सुन के सारे जितने भी अन्य ब्राह्मण थे, अन्य जितने भी बंधु जन थे, वो सब लोग जय जय बोलने लगे। तत्क्षण आईला सकल वाद्यकार मृदंग शरी वंशी बजय अपार। तो ऐसा उस समय जितने वाद्यकार थे, बहुत सारे मृदंग बजाने वाले हैं, शहनाई बजाने वाले हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, वो सब आके एकदम सुंदर म्यूजिक बजाने लगे। देव स्त्रीय मात्र स्त्रीय न परिचिंता देव नारे एकत्र हैव बल मात्र। जितने भी सब देवता लोग हैं वो सब लोग अपने अलग छद्म वेश में आके वो सब उसमें। तो अदिति सब लोग आए और चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद दिए। जितने भी देवता लोग हैं वो सब ऐसे आशीर्वाद देते देते वर्णन आता है। ये जो जगन्नाथ मिश्र उत्सव है ये वर्णन के परे है। जहां जहां कई नागरे कई बागरे किवा गंग के नागरे किवा ग्रहे किवा गंग तीरे निरवधि सर्वलोक हरिध्वनि करे। जब से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ है जैसे गंगा का प्रवाह होता है उस प्रकार निरवधि सब लोग ये हरि नाम को उच्चारण करने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और प्राकट्य हुआ। उसके विषय में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये जो दो दिन हैं इतना महत्वपूर्ण दिन है, एक है नित्यानंद त्रयोदशी, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। ये दो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मोस्ट फेवरेबल, बिकॉज सर्वयर मंगल यही दुए पुण्यतिथि सर्व शुभ लग्न आदि स्थान हय तिथि। ये दो दिन अगर कोई अच्छा भक्ति कर लेता है, अच्छी तरह से पालन करता है, उनको भक्ति अच्छा होता है। तो कृष्ण जन्म का तिथि और वैष्णव का जन्म तिथि का जो महिमा का वर्णन आगे वृंदावन दास ठाकुर आगे की अध्याय में कहते हैं। सार रूप में बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का उत्सव के उपलक्ष में आज जगन्नाथ मिश्र अनेकों अनेकों प्रकार के उत्सव बनाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव में इसको मिश्र उत्सव कहा जाता है और गौड़ी वैष्णव के लिए एक नया साल है जो न्यू ईयर, तो इसलिए नया साल की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रभुपाद की जय।